بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ فتح کی 28ویں اور 29ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عبدالعزیز حسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول اللہ، والذین معه اشد فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، وہی وہ ایشور ہے جس نے اپنے پیغمبر کو مارگ درشن اور ستیہ دھرم کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سبھی دھرموں پر پربھتو پردان کرے और गवाही के लिए तो अल्लाह ही पर्याप्त है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वे काफिरों के लिए अत्यंत कड़े और आपस में अत्यंत दयालु हैं। तुम उन्हें देखोगे कि ईश्वर के समक्ष झुके हुए और नतमस्तक होकर अपने पालनहार से अनुग्रह और दया व कृपा के इच्छुक हैं। अत्यधिक सजदों के कारण उनके चेहरों पर सजदों के चिन्ह हैं। उनकी यही विशेषता तौरात में है और उनकी यही विशेषता इंजील में है। जैसे कोई खेती हो जो पहले अपना अंकुर निकाले, फिर उसे सशक्त बनाए, फिर वो मोटी हो जाए और अपने तने पर सीधी खड़ी हो जाए कि जो खेती करने वालों को भाने लगे ताकि उनके माध्यम से काफिरों को जलाया जाए और उनमें से जो लोग ईमान लाए और अच्छे कर्म करते रहे उनसे अल्लाह ने क्षमा और महान प्रतिफल का वादा किया है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7,445 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज सोमवार है, दय की पहली, जमादी सानी की 6 और दिसंबर की 31 तारीख। प्रोग्राम में पहले आप राजनीतिक चर्चा सुनेंगे, उसके बाद विश्व दर्पण। क्षमा कीजिएगा, सबसे पहले आप समाचार सुनेंगे, उसके बाद राजनीतिक चर्चा पेश होगी, जिसके बाद आप सुनेंगे विश्व दर्पण और सभा का अंतिम प्रोग्राम है जल संकट। इमाम अली नकल इस्लाम फरमाते हैं कि मूर्ख अपनी जबान का कैदी होता है। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492। और अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति रूहानी ने प्रजातंत्र चुनाव और जनता की राय को इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था की बुनियाद बताया है। ईरान और गुट चार धन एक ने अमेरिका के बिना परमाणु समझौते को बाकी रखने पर बल दिया है। भारत सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को एक बार फिर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, जबकि किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। ब्रिटेन में ज्यादा खतरनाक कोविड 19 के नए वेरिएंट मिलने के बाद कई देशों ने ब्रिटेन से मिलने वाली सीमाओं को सील कर दिया है। और बाप मोहम्मद अली कुम्मी से विस्तार से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रूहानी ने प्रजातंत्र चुनाव और जनता की राय को इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था की बुनियाद बताया। डॉक्टर हसन रूहानी ने सोमवार को मौलिक व नागरिक अधिकारों की बैठक में कहा कि इमाम खुमैनी ने संविधान में इस्लामी गणतंत्र पर ताकीद की है। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणतंत्र सरकार का आधार लोगों की राय है। उन्होंने बल दिया कि देश के संविधान को विश्व स्तर पर अहमियत दी जाती है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि देश के संविधान में खास तौर पर राष्ट्र के अधिकार से संबंधित कानून और नियम स्पष्ट व आधुनिक हैं, जिन्हें दुनिया के सामने आधुनिक संविधान के तौर पर पेश किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान अपनी रक्षा प्राथमिकताओं की बुनियाद पर अमल करता है। सईद खतीबजादे ने कहा कि ईरान इस सिलसिले में पूरी दृढ़ता दिखा चुका है और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर किसी से कोई बात नहीं होगी। उन्होंने सोमवार को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि परमाणु समझौते जेसीपीओए पर दस्तखत बातचीत के बाद हुए हैं, इसलिए कोई भी यह न सोचे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को फिर से उठाकर उस पर बातचीत की जा सकती है। सईद खतीबजादे ने गुट चार धन एक के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक का भी जिक्र किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान और आईएईए के बीच संबंध को तकनीकी बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी से कहा कि वह राजनीतिक मामलों को खुद से दूर रखे और किसी तरह के दबाव में न आए ताकि उसकी साख पर बट्टा न लगे और ईरान के साथ तकनीकी सहयोग भी जारी रहे। सईद खतीबजादे ने कनाडा के विदेश मंत्री के बयान के बारे में, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनका देश यूक्रेनी हवाई जहाज की दुर्घटना की जांच और इसके जिम्मेदारों को दंडित करने की प्रक्रिया से राजी न होने पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शिकायत करेगा, कहा कि कनाडा के अधिकारी का हस्तक्षेपपूर्ण बयान अस्वीकार्य है और इस घटना की तकनीकी रिपोर्ट तैयार है जो जल्द ही प्रकाशित होगी। ईरान और गुट चार धन एक ने परमाणु समझौते को बाकी रखने पर बल दिया है। सोमवार को यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल की अध्यक्षता में ईरान और गुट चार धन एक की वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक के अंत में गुट चार धन एक ने परमाणु समझौते को बाकी रखने पर अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 22-31 को लागू बताया। इस बैठक में ईरान और गुट चार धन एक के सदस्य देशों जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन के विदेश मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में JCPOA के सदस्य देशों ने समझौते को बचाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध बताया। इस्लामी गणतंत्र ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख ने कहा कि पाबंदियां ईरानी राष्ट्र के कदम नहीं रोक सकती और ईरान पाबंदियों को नाकाम बनाने की हर कोशिश करेगा। सैयद इब्राहिम रईसी ने सोमवार को ईरानी राष्ट्र के खिलाफ पश्चिम के अत्याचारों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस्लामी ईरान सभी क्षेत्रों में ताकतवर बनकर पाबंदियों और खतरों को नाकाम बना सकता है। उन्होंने शक्तिशाली ईरान के लिए दृढ़ता और दुश्मन की पाबंदियों की नाकामी को जरूरी बताया। ईरान के न्यायपालिका प्रमुख ने बल दिया कि प्रतिबंधों को नाकाम बनाने के लिए एक घंटे के लिए विलंब भी न सिर्फ अक्ल के खिलाफ बल्कि धर्म के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि देश की योजना बनाने वालों को चाहिए कि पाबंदियों को नाकाम और देश को ताकतवर बनाने के लिए एक सेकंड भी बर्बाद न करें और यह ईरान की मूल रणनीति है जिस पर गंभीरता से अमल की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए जबकि मरने वालों की तादाद 191 हो गई। डॉक्टर सीमा सादात लारी ने सोमवार को देश में कोरोना के ताजा आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,151 नए केस सामने आए जिसमें 991 मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया जबकि बाकी अन्य को आवश्यक निर्देशों के साथ होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि अब ईरान में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 11,64,553 हो गई है। प्रवक्ता ने बताया कि अब तक देश में 8,94,336 लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। IRGC के कुछ फोर्स के पूर्व कमांडर जनरल सुलेमानी और अल हशदुशाबी के पूर्व डिप्टी कमांडर महदी अल मुहंदिस की शहादत की पहली बरसी पर बगदाद स्थित अमरीकी दूतावास पर रॉकेट हमले तेज हो गए हैं। ईरान के सैन्य सूत्रों का कहना है कि रविवार को अमरीकी दूतावास पर 8 रॉकेट फायर हुए जिसमें एक इराकी सुरक्षाकर्मी घायल हो गया और कुछ कारों और एक आवासीय परिसर को नुकसान पहुंचा जो आमतौर पर खाली रहता है। गौरतलब है कि 3 जनवरी 2019 को बगदाद एयरपोर्ट के निकट जनरल कासिम सुलेमानी और हशदुशाबी के कमांडर अबू महदी अल मुहंदिस की कार पर अमरीकी ड्रोन विमानों ने मिजाइल हमला करके उन्हें शहीद कर दिया था। अमरीकी दूतावास ने एक बयान जारी करके कहा कि दूतावास की सी रैम सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया था जो मिजाइलों और रॉकेटों को हवा में नष्ट कर देती है। बयान में कहा गया कि अमरीकी दूतावास ग्रीन जोन को निशाना बनाकर किए गए रॉकेट हमले की पुष्टि करता है। हमले में दूतावास के परिसर को मामूली नुकसान पहुंचा। दूतावास ने सभी इराकी राजनीतिक दलों और नेताओं से आग्रह किया कि वे इस तरह के हमले को रोकें और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय करें। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाते ही नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के लिए कदम बढ़ाएंगे। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू होते ही संशोधित नागरिकता कानून CAA को लागू करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से कई काम रुके हुए हैं जैसे CAA के नियम बनने अभी बाकी हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन देने का काम शुरू होने और कोरोना की चेन टूटने के बाद इस पर काम किया जाएगा। अमित शाह ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के कारवां पर हमले के संबंध में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार IPS अधिकारियों को बुलाने का केंद्र के पास अधिकार है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को केंद्र सरकार पर उंगली उठाने से पहले नियमों को देखना चाहिए। अमित शाह ने दावा किया कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार की नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बाहरी भीतरी का मुद्दा उठा रही हैं। भारत में कृषि से संबंधित 3 कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली की कई सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। सरकार ने खत लिखकर किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दिया है और उनसे बातचीत की तारीख तय करने के लिए कहा है। किसानों ने सोमवार को भी भूख हड़ताल की और कहा है कि वे आगे भी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। रविवार को सिंघू सीमा पर पुलिस बल ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आंसू गैस के गोले फायर किए थे। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब तक 5 दौर की बातचीत नाकाम रही है। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों पर किसानों को इस बात की चिंता है कि इन कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जिससे वे बड़े कॉरपोरेट्स पर निर्भर हो जाएंगे। किसान संगठनों के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक भी नाकाम रही है। किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं और उनकी मुख्य मांग यह कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन कानूनों को वापस लिया जाए। ब्रिटेन में ज्यादा खतरनाक और तेजी से फैलने वाले COVID-19 के नए वेरिएंट मिलने के बाद सऊदी अरब ने सभी यात्रियों के लिए अपनी सीमाओं को सील कर दिया है। रियाज ने कम से कम एक हफ्ते के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ समुद्री और जमीनी रास्तों को भी बंद कर दिया, इसलिए कि सबसे पहले ब्रिटेन में मिलने वाला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ज्यादा घातक और बेकाबू बताया जा रहा है। यहां तक कि नए कोरोना वायरस वेरिएंट मिलने के बाद यूरोप के कई देशों ने ब्रिटेन की यात्रा पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। नए प्रकार का यह कोरोना वायरस लंदन और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में तेजी से फैल रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि नई किस्म के कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इसके तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को एक हफ्ते के लिए रद्द कर दिया गया है, जिसे अगले हफ्ते भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से बंदरगाहों और जमीनी रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस युद्धग्रस्त देश में सऊदी सैन्य गठबंधन के परिवेष्टन के कारण हर साल 1,00,000 नवजात शिशुओं की मौत हो रही है। सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों ने मार्च 2015 में यमन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और पश्चिम एशिया के सबसे गरीब देश की घेराबंदी कर दी थी। अलमसीरा टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सऊदी अत्याचारों के कारण हर 2 घंटे में 6 यमनी बच्चों की मौत हो रही है। यहां तक कि सऊदी सैन्य गठबंधन खाद्य पदार्थ और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति पर भी रोक लगा रहा है। यमनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश की अमानवीय परिवेष्टन और घेराबंदी ने सबसे ज्यादा बच्चों और महिलाओं को प्रभावित किया है। तुर्की में 9 साल से ज्यादा कम उम्र के बच्चों को राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान का अपमान करने के आरोप में अदालत के सामने पेश किया गया, जिनमें से 264 की उम्र 12 से 14 साल के बीच है। रविवार को तुर्की के न्याय मंत्रालय ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उल्लेख किया गया कि पिछले 6 वर्षों के दौरान राष्ट्रपति के अपमान में 1,28,872 मामलों की जांच की गई। अभियोजकों ने 36,000 शिकायतों का मूल्यांकन किया और केवल वर्ष 2019 में 11,370 के खिलाफ आपराधिक मामले शुरू किए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं, मेरा सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम बगदाद में अमरीकी दूतावास पर फिर रॉकेटों से हमला, ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप ने मचाई तबाही और दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी। तो पहले बगदाद में अमरीकी दूतावास पर रॉकेटों से हमला। रविवार की रात एक बार फिर अमरीकी दूतावास पर कई रॉकेटों से हमले किए गए। रॉकेटों के हमले के बाद अमरीकी दूतावास पर तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया और उसके सायरन की आवाज बगदाद के लोगों को परेशान करने लगी। बगदाद से IRIB के लिए जलाल खालिदी की रिपोर्ट ساتھی محمد مہدی کی زبانی۔
رویوار کی رات بغداد میں استھت امریکی دوتاواس ایک بار پھر 6 کارٹیوشا میزائلوں کا نشانہ بنا۔ اس حملے کے بعد امریکی دوتاواس پر لگا اینٹی میزائل سسٹم سکریہ ہو گیا اور اس سے بغداد کا واتاورن تناؤ گرست ہو گیا۔
هذا حقيقة انتهاك صارخ لسيادة العراق۔
واسطہ میں یہ عراق کی اکھنڈتا اور سمپربھتا کا کھلا الگھن ہے۔ امریکی نہ کیول عراقیوں کا سمان نہیں کرتے بلکہ انہوں نے امریکی دوتاواس کو سینے چھاونی میں بدل دیا ہے۔ ابھی تک کسی گٹ نے ان میزائل حملوں کی ذمہ داری سویکار نہیں کی ہے، کنتو یہ لگتا ہے کہ یہ حملہ دیش سے امریکی سینکوں کے بنا کسی شرط کے نکلنے کے لیے پاس ہونے والے پرستاؤ کی ورشگانٹھ کے نکٹ آنے کے اوسر پر کیا گیا ہے۔
تصویت الاخیر من البرلمان العراقی لاخراج،
سنسد میں پاس ہونے والے پرستاؤ کے آدھار پر ہم دیش میں موجود ہر ودیشی سینک کی اپستھتی کو غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ اگر وہ عراق کی اکھنڈتا اور سمپربھتا کے سمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں عراق کی دھرتی سے نکل جانا چاہیے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ عراق میں موجود اپنے 5,000 سے ادھک سینکوں کو نکالنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن ادھکتر عراقی اپنے دیش سے امریکی سینکوں کے نکلنے کے سمے کا انتظار۔ اسی مدھ عراقیوں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ بغداد سہیت عراق کے کئی پرانتوں میں امریکہ کے ورودھ کئی پردرشنوں کا آیوجن کرنے والے ہیں۔ ان پردرشنوں کا مقصد اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ وہ دیش سے امریکی سینکوں کو نکالنے کے سنسد کے پرستاؤ کا بھرپور سمرتھن کرتے ہیں۔ جلال خالدی، IRIB نیوز، عراق، بغداد۔
پوری دنیا میں اپنے خونی پنجے گاڑنے کے بعد کرونا وائرس نے برٹن میں نیا روپ دھارن کر لیا ہے اور اس نے اب تک بہت زیادہ تباہی مچا رکھی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 10 دنوں کے دوران برٹن میں سب سے زیادہ لوگ کرونا وائرس سے پربھاوت ہوئے ہیں۔ لندن سے IRIB کے لیے مشتبہ قاسم زادے کی رپورٹ، ساتھی قائم رضوی کی زبانی۔
برٹن میں کورونا وائرس کا نیا روپ بہت ہی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، جس کے کارن لوگوں کی موت میں نرنتر وردھی ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے 10 دنوں کے دوران اس دیش میں کیول 2,50,000 لوگ کورونا وائرس میں گرست ہوئے ہیں، اور اس پرکار کورونا وائرس سے اس دیش میں گرست ہونے والوں کی سنکھیا بڑھ کر 2,000,000 سے ادھک ہو گئی ہے۔ برٹن کے ادھکتر اسپتال کورونا میں گرست چنتا جنک استھتی والے مریضوں کی وجہ سے بھر چکے ہیں۔ دیش میں لگاتار کمیوں کو محسوس کیا جا رہا ہے۔
جس چیز نے ہم سب کو چنتت کر دیا ہے وہ روگیوں کو بچانے کے لیے آکسیجن کے بھنڈاروں کی کمی ہے۔
اس پرکار سے دنیا کی چھٹی سب سے بڑی ارتھ ویوستھا میں کورونا سے مرنے والوں کی سنکھیا یورپ میں سب سے ادھک ہو چکی ہے اور اس میں نرنتر وردھی ہوتی ہی جا رہی ہے۔ برٹن کے سواستھ منترالے کی رپورٹ کے انوسار پچھلے 10 دنوں کے دوران اس دیش میں 4,500 سے ادھک روگیوں کی موت ہو چکی ہے۔
میں سمجھتی ہوں کہ ویکسین کے آنے سے حالات کچھ بہتر ہوں گے، لیکن ہر چیز ہمارے ویوہار پر نربھر ہے۔ یدی ترک پورن نہ ہو اور ویکسین کے بھروسے ساودھانیوں کو چھوڑ دیں تو ہمیں اس سے بھی برے اور کالے دنوں کا انتظار کرنا ہوگا۔
کچھ ٹیکہ کاروں کا کہنا ہے کہ ویکسین وترن کی یوجنا بھی اس دیش میں کورونا کو نینترن کرنے میں سرکار کے کریا کلاپوں کو صحیح نہیں بنا سکی۔ پوری دنیا میں اب تک گھاتک بیماری کورونا کی روک تھام کے لیے پریوگ ہونے والی ویکسین کے کوئی وشیش پرینام سامنے نہیں آئے ہیں۔ یہی کارن ہے کہ چکتسا پروٹوکول اور چکتسا سدھانتوں پر عمل کرنا ہی کورونا کو روکنے کا سب سے بہترین راستہ سمجھا جا رہا ہے۔ لندن سے IRIB کے لیے مشتبہ قاسم زادے۔
دوستوں، اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कड़ाके की ठंड के बीच एक बार फिर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किसान नेताओं के अनुसार प्रदर्शन कर रहे किसान अलग अलग समूहों में भूख हड़ताल करेंगे और पहले समूह में 11 लोग होंगे। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान बीते 4 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने सिंधु बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में रविवार को कहा था कि सोमवार को किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ सभी प्रदर्शन स्थलों पर 1 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। इसकी शुरुआत सिंघू बॉर्डर समेत प्रदर्शन स्थलों पर 11 सदस्यों का एक दल करेगा। विस्तृत रिपोर्ट के साथ नई दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भारत में कृषि कानूनों के विरुद्ध दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के धरने जारी हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर जारी आंदोलन को तीव्र करने हेतु आज 24 घंटे की बारी बारी से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 5 चरणों की वार्ता विफल होने के बाद केंद्र सरकार ने किसानों से अगले चरण की वार्ता के लिए समय निर्धारित करने को कहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार समस्या का समाधान ही नहीं चाहती।
अगर सरकार करना चाहती तो दिल्ली बहुत दूर नहीं, हम लोग दिल्ली में हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं। आदरणीय मोदी जी आ जाएं, किसानों के बीच में बैठ करके उसको मांग पूरी कर दे, बात खत्म हो जाएगी, हम लोग अपने घर चले जाएंगे शाम को।
एक ही समाधान है, जो तीनों बिल बिना मांगे किसानों के इन्होंने हमारे ऊपर थोपा, ये वापस ले लें और हम जो अनाज पैदा करते हैं उसकी हमें कीमत मिले, इस बात की गारंटी सरकार दे दे, हम लोग अपने अपने घरों पे चले जाएंगे।
तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर लड़े किसानों के ये धरने आज 26वें दिन भी जारी रहे और किसान अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है।
400 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, उन्हें हर जगह रोका जा रहा है। परसों जो ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी कोटार से, आ रही थी शाजापुर से, उन्हें पूरनपुर से वापस लेके जाया गया। आज वो उन्होंने कहा हम दुगनी लेके आएंगे, दुगनी लेके आ रहे हैं और उनको फिर रोक दिया गया है।
कड़ी ठंड में आसमान के नीचे धरने पर बैठे किसान नेताओं ने कहा कि यदि सरकार वार्ता के द्वार खुले रखना चाहती है तो वह किसानों को दिल्ली आने से क्यों रोक रही है।
भारतीय किसान समिति है, वो ऑर्गेनाइज कर रही है इसका, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ जो कलेक्ट होगा जो ब्लड, यहाँ एक एक बूंद जो वो किसानों और जवानों के लिए ही समर्पित है।
किसानों की समिति ने धरना स्थल पर रक्तदान का एक शिविर भी लगाया है। दिल्ली से मिलने वाली उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं पर बैठे किसान सरकार से नाराज हैं और उनका कहना है कि सरकार हमारे इस शांतिपूर्ण आंदोलन को, जो उनके अनुसार राजनीति से परे है, बदनाम करना बंद करे। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारी इस सभा के अंत में आप सुनेंगे कार्यक्रम जल संकट, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम विश्व दर्पण।
विश्व दर्पण। दोस्तों कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूँ रविश जैदी, मेरा सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम का विषय है गरीब यमनी राष्ट्र के खिलाफ अमरीकी प्रतिबंधों का बम। आशा करते हैं हमेशा की तरह आज का भी कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें। दोस्तों यमन दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जहां गरीबी इतनी है कि इंसान देखते ही देखते कंकाल में बदल जाता है। माएं अपने दूधमुहे बच्चों को दूध तक नहीं पिला पा रही हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार हैं। रोते बिलकते और भूख से तड़पते बच्चे की माँ का कहना है कि हम क्या करें, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को अस्पताल तक ले जा सकें।
नफ्स जहाज शाफ्ट लुक्सगीन बोथ लुक्सगीन व बाद العلاجات الهامه نفس المهديات علاجات الحمى هذه ليست متوفره بشكل كامل।
इसी तरह ये जो रोने की आवाज थी एक 12 वर्षीय बच्चे की थी जो केवल 7 किलो का रह गया है। बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि यमन में चिकित्सा सुविधा रह ही नहीं गई है, दवाओं से लेकर चिकित्सा उपकरणों की भारी कमी है। हमसे जितना हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो यमन में मानव जीवन की केवल निशानियां ही बचेंगी।
احنا في معانا حل للبير هذا و النشكي امرنا على الله وعلى ثم الدوله يجعلوا لنا حل من هذا المرض الخاسر।
इस बूढ़े यमनी बाप का कहना है कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मर रहा था, मुझे पता था कि उसको कुएं का गंदा पानी पीने से कारला हो गया है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इस कुएं के अलावा हमारे पास पीने के पानी का कोई साधन नहीं है। हम अपने हाथों से जहर पी रहे हैं, एक दिन हम सब मर जाएंगे। दोस्तों ये सब सुनाने और बताने का हमारा उद्देश्य ये है कि आप केवल अंदाजा लगाएं कि वर्ष 2015 मार्च महीने से सऊदी अरब और उसके पिट्ठू अरब देश, अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों की मदद के साथ साथ इसराइल की पूर्ण सहायता से यमन पर पाशविक हमले कर रहे हैं। सऊदी गठबंधन यमन की आसमानी, जमीनी और समुद्री घेराबंदी भी किए हुए है, जिसके कारण आज यमन दुनिया की सबसे बड़ी मानव त्रासदी की ओर बढ़ रहा है। इन सब के बीच अमेरिका ने जो ताजा हैवानियत की मिसाल पेश की है वो ये है कि पहले ही मानव त्रासदी के मुहाने पर खड़े यमन पर उसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना, जिससे ऐसा लगता है कि अमेरिका चाहता है कि जितनी जल्दी हो वो यमन से मानवता का नामोनिशान मिटा दे। अब सवाल ये उठता है कि क्या पश्चिमी एशिया के सबसे गरीब देश, जहां युद्ध और गरीबी की वजह से मानव जीवन पहले ही खतरे का सामना कर रहा है, ऐसी स्थिति में उस पर अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाया जाना सही है? इस बारे में पाकिस्तान के वरिष्ठ टीकाकार साकिब अकबर का कहना है कि
देखिए मैं ये कहता हूँ कि 2015 मार्च से इन लोगों ने कौन सी कमी की है पाबंदियों के लिहाज से, पूरी की पूरी कौम उनकी पाबंदियों और मुहासरे में है। 17,000 से ज्यादा लोग इनकी वैशियाना बमबारियों से शहीद हो चुके हैं और मजरूहीन और जख्मियों का कोई अंदाजा नहीं है, और खुद यूएनओ की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 मिलियन बच्चे जो हैं वो भूख से मर रहे हैं और मौत के करीब हैं, और इनके दिल उन मजलूम बच्चों के लिए नहीं पसीजते जैसे कुफार कुरैश और उन जालिमों के दिल जो है वो जो शेब अबी तालिब के मजलूम बच्चों की फरियाद और रोने धोने पे नहीं पसीजते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तो सब पाबंदियां ऑलरेडी वो आयद कर चुके हैं, इसका मतलब ये है कि वो इस तरीके से अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और آپ یہ دیکھیں کہ کون سا ظلم ہے جو انہوں نے اس دور میں جو ہے روانی رکھا. اگر یہ قوم اس کے باوجود اس سارے ظلم کے خلاف زندہ ہے, ڈٹی ہوئی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, یعنی کئی محاذوں پر آج بھی پیش رفت کر رہی ہے کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تازہ پابندیاں جو ہیں یہ اس ان چیزوں کی طرف اور وہاں کے حکومت جو ہے جو جینون ہے عوام کی, اور بار بار باہر نکل کے ملین مارچ کر کے ان مظلوموں نے ثابت کیا ہے کہ وہ امریکہ اور جارحین کے جو ہے وہ خلاف ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس استقامت کی طرف سے نظریں ہٹانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی نیا شوشہ جو ہے وہ چھوڑتے رہتے ہیں, اور یہ پابندیاں بھی ان کے ان شوشوں میں سے ہیں.
اسی طرح جب ہم نے بھارت کی راجدھانی دلی میں رہنے والے ورشٹھ پترکار ایوم ٹیکاکار جلیل مہندی سے پوچھا کہ یمن پر امریکہ دوارا نئے پرتیبندھ لگائے جانے کے پیچھے واشنگٹن کا کیا ادیش ہو سکتا ہے, تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ
دیکھیے اگر آپ امریکہ کا ڈلیما دیکھیں, امریکہ جو اس چیز کو بالکل ایک شفاف نظر سے دیکھ رہا ہے کہ پانچ سال سے سعودی عرب اور اس کے عرب حوالیف اور اس میں امریکہ کا بہت بڑا رول ہے اور یورپین یونین بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے, اس نے پانچ سال سے ریگولر ایک ماڈرن ملٹری مشین جو ہے بمباری کر رہی ہے, گولے برسا رہی ہے اور اس کا احاطہ کر رکھا ہے, سینکشنز سے دو چار ہے, تو پانچ سال سے جو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اس کے باوجود بھی ایک ایسا ملک جو بالکل کمزور ہے, جو غریب ملک ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے ان کو ہرا نہیں پائے, ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کیا ہے. تو پانچ سال میں آپ نے جو ہے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں, ابھی آکسفیم اور یونیسیف کی دو رپورٹس ملا کے اگر آپ دیکھ لیں تو صرف G20 نے 17 ارب ڈالر کا اسلحہ جو ہے سعودی عرب کو بیچا ہے ان پانچ سالوں میں, 17 ارب ڈالر, اور اس میں 5 ارب ڈالر یورپین یونین کے ممالک نے بھیجا ہے جو ہیومن رائٹس کے علم بردار بنے پھرتے ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے ان کو زیر نہیں کر پائے, یمنیوں کو زیر نہیں کر پائے, یمنی عوام کی طاقت ان پانچ سالوں میں بالکل تمام دنیا کے سامنے ہے, حوثی جو ہے ان کی طاقت تمام دنیا کے سامنے ہے, تو امریکہ اس چیز پر اب مجبور ہو گیا ہے کہ اب جو ہے مجھے امریکہ کے لیے, خاص کر جو نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی ان کے لیے سب سے اہم جو مجھے لگتا ہے ایک پالیسی گول ہوگا وہ ایک آبرو مندانہ خروج ہوگا یمن سے, کیونکہ ایسا جو ہے ایک فیس سیونگ ایگزٹ ایسا بنائے تاکہ ہم جو ہے ایک گریٹ پار ہیں, بہت ہی سپر پار ہیں وغیرہ وغیرہ, اور ہمارے حوالی بھی جو ہے عرب حوالی ان کا بھی جو ہے تھوڑا ایک فیس سے نہیں ایگزٹ ان کے لیے ہو, ورنہ پانچ سالوں میں ان کے لیے یہ چیز بالکل واضح ہے کہ یمنیوں کو ہرانا ناممکن ہے, ان کو جو ہے ان کے ساتھ آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں, ریکنسلیشن کر سکتے ہیں, باقی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جنگ کے ذریعے دھمکانے کے ذریعے جو ہے آپ ان کو زیر نہیں کر پائیں گے, تو میرے نزدیک جو ہے امریکی پالیسی میکرز جو ہے ان کے لیے جو یہ چیز بالکل آیا ہے بالکل واضح ہے, اور اسی لیے اب جو ہے اب ایک نئی ٹائپ کی سینکشنز جو ہے جو کہ ایک آغاز ہے ایک پالیسی اپروچ کا, یہ ضروری ہے ان کے لیے.
وہیں اگر دیکھا جائے تو چاہے سعودی عرب اور چاہے اس کے پٹھو عرب دیش ہوں یا امریکہ سہیت وہ سامراجوادی شکتیاں جو یمن پر پاشوک حملہ کرنے والے سعودی گٹھ بندھن کا پورا سہیوگ کر رہے ہیں, انہوں نے یمنی راشٹر کے خلاف ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے, ہر استر کا اتیاچار کیا, لیکن یمنی جنتا کے حوصلے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا جانتے ہیں. تبھی تو 11 دسمبر 2020 شکروار کو یمنی راشٹر نے سامراجوادی شکتیوں کے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ وہ اس کی دھمک ورشوں تک محسوس کریں گے. موقع تھا یمن کے غریب پریوار, شہیدوں کے پریوار, یدھ میں گھائلوں کے پریوار, ضرورت مند پریوار, یمنی قیدیوں کے پریوار اور سماج کے کمزور ورگ سے سمبندت 3,300 جوڑوں کے سموہ وواہ کا.
اليوم فرحتنا
رغم كل الجراح هنا اليمن تظهر
اليوم هو عرس
یمنیوں کا کہنا ہے کہ ہر طرح کے دکھ درد کے باوجود ابھی بھی خوشیوں کے لیے بہت سمے ہے وہ بھی اتنی بڑی سنکھیا میں یمنی جنتا کی موجودگی میں سموہ وواہ نے پورے یمنی سماج کو خوشی کے رنگ میں رنگ دیا ہے یمنی راشٹر کی خوشی دیکھ کر امریکہ اسرائیل اور اس کے پٹھو عرب دیش کانپ رہے ہیں یدھ گھیرا بندی اور پرتبندوں کے بیچ یمنی جنتا کے اس طرح کے بیان کے بارے میں جب پاکستان کے ورشٹھ ٹیکہ کار ثاقب اکبر سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا جذبہ ہے جو یمنیوں کے ارادوں کو کمزور نہیں کر پا رہا ہے تو انہوں نے کہا
میں کہتا ہوں دنیا کو حیران کر دینے والا بیان ہے آپ یہ دیکھیں دوسری طرف یہ کہنا بھئی ہم جب تک آپ ہمارے خلاف جنگ بندی نہیں کریں گے اور ہمارے اوپر جو ہے حملے بند نہیں کریں گے محاصرہ ختم نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر حملہ آور جو ممالک ہیں ان کے ہاں بھی امن قائم نہیں ہو سکتا آپ یہ بتائیں کہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنا بڑا پیغام ہے اور اس وقت صنعاء میں جو پاپولر گورنمنٹ موجود ہے اس کی کیپیبلٹیز جو ہیں ان کی صلاحیت اور ان کا عزم جو ہے وہ کیسے ان چیزوں سے آشکار ہوتا ہے ان حالات میں اگر ان کی مختلف منسٹریز وغیرہ کا جائزہ لیا جائے اور ان کے کاموں کا جائزہ لیا جائے اور جو ان کے بس میں غریب پسماندہ اور اتنی مظالم سہنے والی اپنا نیشن اس کے اندر بندہ دیکھے تو بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ ان حالات میں بھی ان کو جینے سے آتا ہے اور اب اس وقت ان کا یہ کہنا کہ بھئی آپ ہمیں امن سے نہیں جینے دیں گے تو آپ امن سے نہیں رہیں گے ان کی اپروچز اور ان کی پہنچ کو بھی ظاہر کرتا ہے اور یہ بھی ان کا یہ پیغام جو ہے کہ آپ کی بندرگاہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں کہ آپ کی بندرگاہوں کی جو ہے وہ حفاظت کریں تو کمال حیران کر دینے والا بیان ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پابندیاں جو آپ لگا رہے ہیں یہ جو حملے آپ کر رہے ہیں یہ 6.5 سال سے زیادہ عرصہ سے جو آپ ان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں اس نے تو ان کو پہلے سے زیادہ کبھی زیادہ با اعتماد اور زیادہ منظم کر دیا ہے
کل ملا کر امریکہ دوارا یمنی راشٹر کے خلاف لگائے گئے پرتبندوں کو دیکھ کر یہ مانا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور سعودی گٹھ بندھن نے یہ سویکار کر لیا ہے کہ یدھ کا کنٹرول اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے یمنی سینا انصار اللہ اور ان کے سہیوگی پرتیرودھ آندولنوں کا یدھ پر پورا کنٹرول ہو چکا ہے بھلے ہی امریکہ اور سعودی گٹھ بندھن اس بات کو سویکار نہ کریں لیکن زمینی سچائی یہی ہے یدھ کے ہر مورچے پر یمنی سینا اور انصار اللہ نے امریکہ اور سعودی گٹھ بندھن کو صاف صاف پیچھے چھوڑ دیا ہے اب پرتیبندھ لگا کر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ہار کی کھسیاہٹ کو مٹا سکیں لیکن ان پرتیبندھوں کے نتیجوں کو بھی وہ بھلی باتی جانتے ہیں کہ اس کا کسی بھی طرح کوئی اثر یمنی راشٹر کے مضبوط ارادوں پر نہیں پڑنے والا ہے اور آنے والے سمے میں دنیا دیکھے گی کہ یمنی راشٹر نے سبھی اتیاچاروں کے باوجود وجے پراپت کی ہے دوستوں آشا کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا کاریکرم آپ کو پسند آیا ہوگا اب ہمارے کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم
जल संकट।
दोस्तों, जल संकट कार्यक्रम की एक अन्य श्रृंखला लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि इतिहास में बहुत सी सभ्यताओं के उदय, विकास और पतन का उल्लेख है, लेकिन उनके पतन के कारणों के अध्ययन के दौरान मौसम की अनदेखी की जाती है, जबकि किसी भी सभ्यता के पतन में ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। आज ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है कि विभिन्न जातियों के पलायन का सीधा संबंध पानी और मौसम से रहा है, और ये भी सब मानते हैं कि मौसम का बदलाव जहां सभ्यताओं के उदय का कारण रहा है, वहीं ये विभिन्न सभ्यताओं के पतन का भी कारण रहा है। इतिहास भी गवाह है कि जिस सभ्यता के पास ये सब चीजें जितनी ज्यादा रही हैं, उसकी आयु भी उतनी ही अधिक रही है। मिस्र, चीन, रोम, भारत और ईरान जैसी प्राचीन सभ्यताओं के पास इस प्रकार का अपना मूलभूत मजबूत ढांचा था। सदियों से नदियां और झीलें, खेती बाड़ी और पूंजी बड़े बड़े साम्राज्यवादियों के अस्तित्व में आने का कारण बनी हैं। इसके साथ ही नदियों की बहुत सी कहानियों, संगीतों और आस्थाओं में मुख्य भूमिका रही है। ये एक सच्चाई है कि इन बहती नदियों के सीने में बहुत से राज छुपे होते हैं, जिन्हें खोजने पर खोजी को उसके आसपास की सभ्यताओं, जीवन शैलियों, यहाँ तक कि खान पान के बारे में बहुत कुछ मिल सकता है। आज इतने विकास के बावजूद मानव समाज और मानव जीवन के लिए पानी का महत्व अपनी जगह बाकी है, बल्कि पानी कम होने के कारण उसका महत्व बढ़ गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह मानव विकास में इस पदार्थ की भूमिका है।
पानी तक पहुंच और पानी की उपलब्धता जगह और समय के हिसाब से बदल गई है। कुछ क्षेत्रों में आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि जिसकी वजह से वहां उपलब्ध पानी स्थानीय लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि कुछ जगहों पर पानी इतना अधिक है कि वो स्वयं स्थानीय लोगों के लिए समस्या बन जाता है। विभिन्न युगों और कालखंडों में इंसानों ने पानी के भंडारण और उसके जीवन प्रकार के प्रयोगों के बारे में अनुभव प्राप्त किए हैं। इंसानों ने नदियों के पानी पर काबू पाकर उसे बिजली पैदा की है, और कभी पानी से पंचक्की आदि भी चलाई जाती थी। आज ये सबको पता है कि पानी मानव जीवन के लिए कितना जरूरी है, इसलिए पानी के भंडारों पर कब्जे का प्रयास भी बहुत अधिक हो गया है।
पानी की एक खास विशेषता यह है कि दुनिया में उसकी मात्रा निर्धारित है, मतलब दुनिया में इंसानों के लिए जरूरी पानी की मात्रा निर्धारित है, लेकिन आबादी बढ़ गई है, इसलिए जल स्रोतों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। मगर इस बारे में प्रायः नारे ही लगाए जाते हैं, और सही अर्थों में पानी की सुरक्षा बहुत कम देशों में होती है। लेकिन इसके साथ ही समुद्र के खारे पानी को मीठा करने का कार्यक्रम इंसान को मीठे पानी के असीम भंडारों तक पहुंचा देगा। खेती बाड़ी और पेड़ पौधों के लिए पानी का महत्व सब पर उजागर है। इसके अलावा हर इलाके का पानी और उसकी दशा ये तय करती है कि उस इलाके में कौन सी चीज उगाई जा सकती है। पेड़ पौधे की बहुत सी विशेषताओं का निर्धारण भी पानी ही करता है। पानी विलायक भी है, और पेड़ पौधों के भीतर विभिन्न पदार्थ पहुँचाने का साधन भी है। पौधे को अगर पानी की कमी हो जाती है तो उसका फलना फूलना सब रुक जाता है।
मानव जीवन में जिस भाग को सबसे अधिक पानी की जरूरत होती है, मतलब जहां सबसे अधिक पानी खर्च होता है, वो कृषि क्षेत्र है। दुनिया की आबादी बढ़ रही है, और इस बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए कृषि उत्पादों में वृद्धि की जरूरत है, और खेती बाड़ी जितना बढ़ेगी पानी का इस्तेमाल भी उतना अधिक होगा। खेती बाड़ी में सबसे अधिक पानी लगता है। सभी कृषि उत्पाद और पशुपालन पानी पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि अध्ययनों से पता चलता है कि हर वर्ग मीटर पानी से लगभग 2.5 किलो कृषि उत्पाद हाथ आता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में पानी का इस्तेमाल 70% है, बल्कि विकासशील देशों में जहाँ खेतीबाड़ी बहुत अधिक होती है, पानी का 93% इस्तेमाल खेतीबाड़ी में होता है। अलग अलग पौधे अलग अलग तरह और अलग अलग मात्रा में पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर पेड़ पौधे 300 से लेकर 1000 ग्राम तक पानी का प्रयोग करते हैं।
यही नहीं, पानी का घरेलू और औद्योगिक इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। उद्योग में अब 22% और घर में पानी का इस्तेमाल 8% है, लेकिन 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में इन दोनों क्षेत्र में प्रयोग का प्रतिशत खेती से दुगना अधिक के साथ बढ़ा है। आंकड़ों से पता चलता है कि 20वीं सदी में पानी का प्रयोग दुनिया की आबादी में वृद्धि से दुगना से अधिक तेजी से बढ़ा है। आर्थिक विकास और पानी के प्रयोग में सतर्कता को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सन 2030 से 40 तक मांग और उपलब्धता के बीच दूरी 40% तक हो जाएगी।
दुनिया में पानी की कमी का अर्थ बहुत अलग है। पानी की उपलब्धता समय और स्थान पर निर्भर करती है। पानी ऐसी चीज है जो दुनिया में बेहद असंतुलित रूप में फैली है। दुनिया में मौजूद मीठे पानी का 60% भाग दुनिया के 9 देशों के पास है, और इन 9 देशों में चीन और भारत भी शामिल हैं, जिन्हें दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश समझा जाता है। इन्हें पानी का 10% भाग अपने लिए यानी दुनिया की 1/3 आबादी के लिए इस्तेमाल करना होता है। बहुत से देश हैं जहाँ बारिश की वजह से बाढ़ आ ही जाती है, जबकि बहुत से देशों में सूखा पड़ा रहता है। बहुत से गरीब देशों में अधिकांश गतिविधियां खेती बाड़ी से संबंधित होती हैं, और इन्हीं देशों में पानी की भी सबसे अधिक जरूरत होती है, लेकिन इन देशों में पानी के इस्तेमाल की सुविधा न होने के कारण त्रासदी जन्म लेती है। उदाहरण स्वरूप, अफ्रीका में भूमिगत जलाशयों और नदियों व झीलों के रूप में पानी के विशाल स्रोत मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद अफ्रीका रेगिस्तान में मात्र 4% खेतों की ही सिंचाई संभव है।
पानी तक पहुंच तो एक समस्या है, लेकिन साफ पानी की उपलब्धता एक अलग मुद्दा है, और आज दुनिया में मौत की एक बड़ी वजह प्रदूषित पानी है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया में हर साल लगभग 36 लाख लोग साफ पानी न मिलने की वजह से मर जाते हैं। बहुत से देशों में सही व्यवस्था न होने के कारण पानी बुरी तरह से प्रदूषित हो जाता है, और जब लोग उस पानी को पीते हैं तो भांति भांति की बीमारियों में ग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रदूषण का सबसे अधिक शिकार बच्चे होते हैं। वैसे ये सही है कि पानी की उपलब्धता में मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन उपलब्ध पानी की सुरक्षा और प्रयोग की शैली भी पानी की उपलब्धता में एक निर्णायक तत्व है। पानी का सही प्रयोग निश्चित रूप से विकास का कारण है, क्योंकि पानी की कमी विकास की राह की मुख्य रुकावट नहीं है, बल्कि पानी का सही प्रयोग न करना विकास की राह की रुकावट है।
इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पानी की उपलब्धता मूल रूप से पानी के सही प्रयोग और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था पर निर्भर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लगभग हर देश में क्षेत्र में कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। इसके लिए एक उदाहरण नेपाल का दिया जा सकता है, जहां पानी ही पानी है, अर्थात ये देश पानी के स्रोतों से संपन्न है, लेकिन आपको हैरत होगी कि पेयजल की उपलब्धता और पानी के सही प्रयोग के मामले में ये देश दुनिया में बहुत पीछे है। इसके उलट सिंगापुर है, जहां पानी की बहुत कमी है और उसे अपनी ज़रूरत का पानी मलेशिया से लेना पड़ता था। आज ये देश सही योजना और व्यवस्था के कारण पानी के सही प्रयोग के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में समझा जाता है।
इस तरह हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो ज़माना नहीं है जब हर सस्ती चीज़ को पानी की तरह कहा जाता था, और ज़्यादा खर्च करने वाले के लिए कहा जाता था कि वो पैसा पानी की तरह बहाता है। अब वो दौर आने वाला है जब पानी के लिए पैसे को बहाना पड़ेगा, और ये भी कहा जा रहा है कि वो दौर भी आएगा जब विभिन्न देश पानी के लिए खून बहाएंगे। इसलिए जिन देशों के पास पानी उपलब्ध हैं, अगर वो सही व्यवस्था और योजना बनाएं तो अगली पीढ़ियां पानी की कमी से जूझती नजर नहीं आएंगी। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें, खुदा हाफिज।
दोस्तों, अभी आपने कार्यक्रम जल संकट सुना और अब आप मुख्य समाचारों का सारांश एक बार फिर से सुन लें। राष्ट्रपति रूहानी ने प्रजातंत्र चुनाव और जनता की राय को इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था की बुनियाद बताया है। डॉक्टर हसन रूहानी ने सोमवार को मौलिक व नागरिक अधिकारों की बैठक में कहा कि इमाम खुमैनी ने संविधान में इस्लामी गणतंत्र पर ताकीद की है। ईरान और गुट 4+4+1 ने अमेरिका के बिना भी परमाणु समझौते को बाकी रखने पर बल दिया है। भारत सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को एक बार फिर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, जबकि किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। ब्रिटेन में ज्यादा खतरनाक COVID-19 के नए वेरिएंट मिलने के बाद कई देशों ने ब्रिटेन से मिलने वाली सीमाओं को सील कर दिया है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। तो इसी के साथ ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.